लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में समाज में हमारी कई तरह की भूमिकाएं हैं। परिवार में हम एक दूसरे के लिए पति पत्नी, संतान, भाई बहन, बेटे बेटियां, चाचा चाची, दादा दादी, संगी साथी और संबंधियों की भूमिका अदा करते हैं। हमारी इन सारी भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट उत्तरदायित्व जिसे हम सभी अपने में पाते हैं, वह है एक चरवाहे का कर्तव्य। श्रोताओ, जिस भांति एक चरवाहा अपने रेवड़ की देखरेख करता और प्रेम में उनकी चिंता करता है, उसी भांति हम अपने प्रिय जनों के लिए निश्चित रूप से एक चरवाहे स्वरूप पेश आते और उन्हें अपनी बातों, अपने कार्यों तथा अनुभवों के द्वारा सही दिशा निर्देश देते हैं, जिससे वे जीवन की खुशी को प्राप्त कर सकें, अपने में अमन चैन और शांति का जीवन व्यतीत कर सकें, जो हम में से हर एक मानव की चाह है। श्रोताओ, पास्का के चौथे रविवार को माता कलिसिया भले गढ़िये के त्योहार स्वरूप मनाती है। यह हमें यीशु के जीवन की ओर देखने और उनमें अपने को समुचित रूप से समर्पित करने को प्रेरित करता है, क्योंकि वे ही हमारे लिए एक सच्चे और भले गढ़िये हैं। आइए हम पास्का के चौथे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें, जीवन दाता उस चरवाहे का कौन सा गुण हमें अपने को उनमें बने रहने हेतु प्रेरित करता है।
मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता वह दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़े उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझ सके कि वह उन्हें क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रीस्त की भेड़ शाला की प्यारी भेड़े बने रहने में मदद करे, जिससे हम उनके प्रेम में बने रहते हुए उस संपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए भले चरवाहे ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
श्रोताओ, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पेंतेकोस्त के दिन पेत्रुस के संबोधन का जिक्र करता है, जहां वे इसराइल के सारे घराने सम्मुख यीशु ख्रिस्त को प्रभु और मसीह होने की घोषणा करते हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए, मार डाले गए, जिन्हें पिता ने मृत्यु में से पुनर्जीवित कर दिया। पेत्रुस को सुनने वाले मर्माहत हो गए और वे उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पेत्रुस उन्हें अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगने और यीशु ख्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने का निर्देश देते हैं, जिससे वे अपने को पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित पाएं, जो न केवल उन पर वरन उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी बना रहेगा। श्रोताओ, यहाँ हम पेत्रुस को इसराइल के लिए एक चरवाहे स्वरूप पाते हैं, जो पुनर्जीवित यीशु और आत्मा से प्रेरित होकर लोगों को ईश्वरीय जीवन में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? शिष्यों को पूछा गया यह सवाल हमारे लिए इस बात को प्रकट करता है कि सुनने वाले शिष्यों की बातों से प्रभावित होते ईश्वरीय भेड़ शाला का अंग होने की चाह रखते हैं। श्रोताओ, ईश्वर हमारे जीवन में अपने को उन लोगों के द्वारा प्रकट करते हैं जो हमारी चिंता करते हैं और अपने प्रेम के कारण हमारी भलाई चाहते हैं। ईश्वर के जीवनदायी वचन हमारे लिए ईश भक्त लोगों के द्वारा आते हैं, जो आत्मा से प्रेरित होकर हमारा सही दिशा निर्देशन करते हैं, जिससे हम संपूर्ण जीवन के अधिकारी बन सकें, जिसके लिए हमें यह जीवन दिया गया है। यहाँ हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि भले लोग जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, हमें अपने जीवन में कभी गलत मार्ग में चलने की शिक्षा नहीं देंगे। यदि हम इस बात को अपने संदर्भ में देखें, तो कोई भी माता पिता अपने संतान को बुरे मार्ग में चलने का पाठ नहीं पढ़ाएगा। कोई भी शिक्षक और शुभ चिंतक अपने शिष्यों और चाहने वालों को धोखा या बुराई की राह में जाने हेतु प्रेरित नहीं करेगा। वहीं दूसरी बात कि हम अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने शुभ चिंतकों को, जो सदैव हमारी भलाई चाहते, उनकी बातों को किस रूप में लेते, उन्हें कैसे सुनते और उन्हें अपने जीवन में किस तरह अमल करते हैं। श्रोताओ, संत पेत्रुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें कहता है, हमारे अच्छे कार्यों के बावजूद यदि हमें दुख सहना पड़े तो हम धैर्य से उनका सहन करें, क्योंकि यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। हमारा ऐसा करना हमें यीशु ख्रीस्त से संयुक्त करता है, क्योंकि उन्होंने सबों की भलाई की यद्यपि उन्हें दुख सहना पड़ा। अपने घोर दुख, तकलीफ और पीड़ा की स्थिति में भी उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, किसी को गाली या धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने जीवन की सारी बातों को अपने पिता के हाथों में समर्पित कर दिया। वे एक मेमने की भांति नम्र और दीन बने रहे और उनकी इसी दीनता के कारण पिता ने उन्हें महान बना दिया। श्रोताओ, मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के इस मनोभाव को अपने में वहन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अपने में यह तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने को पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित नहीं पाते हैं। ईश्वरीय आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति यदि हमें प्राप्त नहीं है, तो यीशु ख्रिस्त के इस मनोभाव को अपने में अंगीकृत करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हम वर्तमान परिवेश में दुनिया की आडंबरता से भली भांति वाकिफ हैं। आज के सुसमाचार का प्रथम वाक्य हमें कहता है, जो फाटक से भेड़ शाला में प्रवेश नहीं करता वह चोर और डाकू है। यहाँ भेड़ शाला का द्वार स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं, जो हमें कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मुझसे प्रवेश करने का अर्थ उनके मनोभावों और गुणों को अपने में धारण करना है, जो हमें उनकी तरह भला चरवाहा बनने में मदद करता है। आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के गुणों को अपने जीवन में आलिंगन करने हेतु मदद करें, जिससे हम दूसरों के लिए सचमुच एक भला चरवाहा बन सकें।
तू है स्वामी, तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में शनिवार को क्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना की तथा चिंतन किया कि संकट के समय में किस तरह जिया जाए। उन्होंने मिसा के दौरान छोटे बड़े सभी सरकारी अधिकारियों के लिए याचना की कि प्रभु उन्हें सहायता एवं शक्ति प्रदान करें, क्योंकि उनके कार्य आसान नहीं है। जब उनके बीच विभाजन हो, संकट के इस समय में वे समझ सकें कि उन्हें अपने लोगों की भलाई के लिए एकजुट होना है, क्योंकि एकता हर विभाजन से बढ़कर है। उपदेश में उन्होंने आज के पाठों पर चिंतन किया। पहले पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, आरंभिक कलीसिया में शांति थी, उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए एवं पौत्रात्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जा रही थी। इस व्याख्या से पता चलता है कि कलीसिया उस समय शांत और सांत्वना महसूस कर रही थी। संत पापा ने कहा कि जीवन में सिर्फ शांति के अवसर नहीं है, बल्कि संकट के काल भी हैं। आज सुसमाचार पाठ यीशु के उन शिष्यों को प्रस्तुत करता है जिनके लिए यीशु की शिक्षा अत्यंत कठिन लगी। यीशु ने कहा था कि जो मेरा मांस खाएगा और जो मेरा रक्त पिएगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। संत पापा ने कहा कि कठिन समय में हमें निर्णय करना पड़ता है। वैसे ही 12 शिष्यों को भी निर्णय करना था कि क्या वे भी यीशु से अलग होकर चले जाना चाहते हैं। तब पेत्रुस ने तुरंत जवाब दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। संत पापा ने कहा कि पेत्रुस यीशु के शब्दों को नहीं समझता था, किंतु प्रभु पर भरोसा रखता था। संत पापा ने कहा कि हम ख्रिस्तियों को शांति और संकट दोनों ही क्षणों में सामंजस्य बनाए रखना है। विश्वास में संकट की घड़ी को आध्यात्मिक लेखकों ने इस प्रकार वर्णन किया है कि यह आग पर चलने के समान है, ताकि हम मजबूत हो सकें। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे लिए पौत्र आत्मा भेज दे, जिससे कि हम जान सकें कि संकट के समय में प्रलोभन से किस तरह बचा जाए। प्रभु हमें संकट की घड़ी में शक्ति प्रदान करे, ताकि हम अपने विश्वास को ना त्याग दें। मानव बंधुत्व के लिए गठित उच्च समिति ने एक संदेश प्रकाशित कर 14 मई को मानवता के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। संदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण हमारी दुनिया एक बड़े खतरे का सामना कर रही है, जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों के जान को खतरा है। जबकि हम इस महामारी का सामना करने के लिए औषधि और वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका की पुष्टि करते हैं, हमें ईश्वर के आश्रय की याचना करने भी नहीं भूलना चाहिए जो सब कुछ के सृष्टि करता है। अतः हम विश्व के सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि आप उपवास एवं प्रार्थना करते हुए भलाई के कार्य करें तथा इस महामारी को समाप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से दीनतापूर्वक याचना करें। अंतर धार्मिक वार्ता के लिए गठित परम धम पीठ समिति ने मुसलमानों के पौत्र महीना रमजान के लिए एक संदेश प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने पूजा के सभी पौत्र स्थलों की रक्षा करने का प्रोत्साहन दिया है।
कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले और कार्डिनल बेनियामिनो स्टेला कार्डिनल मंडल के नए सदस्य और महाधर्माध्यक्ष इल्सन डी जीसस मोंटानारी रोमन कलीसिया के नए उप कैमरलिंगो बने। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले को कार्डिनल मंडल में सम्मिलित किया है। 14 अप्रैल 2020 को सामान्य मामलों के लिए स्थानापन महाधर्माध्यक्ष एडगर पेन्नापारा के साथ हुई बैठक में नियुक्ति की गई थी। कार्डिनल मंडल में कार्डिनल तागले को नामित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनलों के सभी मामलों में समान बनाया। कार्डिनल तागले ने फरवरी 2020 से लोक धर्मियों की प्रेरिताई हेतु बनी परम धर्म पीठीय धर्म संघ के प्रीफेक्ट के रूप में कार्य शुरू किया था। संत पापा ने कार्डिनल बेनियामिनो स्टेला को उपनगर की कलीसिया पोर्ता सांता रूफिना के कार्डिनल मंडल का सदस्य बनाया। कार्डिनल बेनियामिनो याजक के लिए बनी परम धर्म पीठीय धर्म संघ के प्रीफेक्ट थे। वाटिकन ने शुक्रवार को महाधर्माध्यक्ष इल्सन डी जीसस मोंटानारी को रोमन कलीसिया का उप कामेरलेंगो के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। महाधर्माध्यक्ष इल्सन धर्माध्यक्षीय धर्म संघ के सचिव हैं। उप कामेरलेंगो के रूप में वे लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविल फारेल के साथ काम करेंगे जिसे 14 फरवरी 2019 को संत पापा फ्रांसिस ने कामेरलेंगो बनाया। उप कामेरलेंगो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कामेरलेंगो की सहायता करते हैं जिसमें परमाध्यक्ष की मृत्यु का औपचारिक प्रमाणन शामिल है, साथ ही नए परमाध्यक्ष के चुनाव तक परम धर्म पीठ की अस्थायी संपत्ति की देखभाल और प्रशासन भी शामिल है। साथ ही संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को मोनसिन्योर मित्या लेस्कोवार को इराक का नया प्रेरितिक राजदूत नियुक्त किया। वे वर्तमान में भारत के प्रेरितिक राजदूतावास में एक पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं। संत पापा ने मोनसिन्योर लेस्कोवार को बेनेवेटम का महाधर्माध्यक्ष बनाया। वे महाधर्माध्यक्ष अल्बेर्टो ओर्टेगा मार्टिन के स्थान पर जा रहे हैं जिन्हें संत पापा ने पिछले साल चिली का प्रेरितिक राजदूत नियुक्त किया था। मोनसिन्योर लेस्कोवार का जन्म 3 जनवरी 1970 को स्लोवेनिया के क्राज में हुआ था। 29 जून 1995 को उनका पुरोहिताभिषेक किया गया और उन्होंने 1 जुलाई 2001 को परम धर्म पीठ की राजनयिक सेवा में प्रवेश किया और बांग्लादेश में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधित्व में काम किया। उन्होंने राज्य सचिवालय के सामान्य मामलों के अनुभाग में अपनी सेवा दी और जर्मनी एवं भारत में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधित्व में काम किया। उन्होंने कैनन लॉ में डिग्री हासिल की है और वे इतालवी, अंग्रेजी, जर्मन, क्रोएशियाई, फ्रेंच और स्पैनिश भाषाएं बोलते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।